दिन भर तारीख 22 फरवरी दिन सोमवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। हरियाणा में आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में अब तक कुल 16 लोग मारे गए। कई राजमार्ग खुले लेकिन कुछ दिक्कतें बरकरार।
सोनीपत में नेशनल हाईवे नंबर 1 पे अभी भी गतिरोध जारी है। घुबड़ू जो मुनक चैनल है जिसमें दिल्ली को पानी दी जाती है, वहाँ पर लोगों ने वो रिपेयर के काम को रोक रखा है।
मुनक नहर को ठीक करने में लगेगा वक्त, तब तक दिल्ली में जल संकट बरकरार रहेगा।
अभी ये जो नहर टूटी है पक्की वाली, इसको रिपेयर होने में हो सकता है 1 हफ्ता या 10 दिन भी लग जाए। तब तक पानी की सप्लाई कम ही रहेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी हम लोग चला देंगे जो कच्चे रास्ते से आ रहा है, उस पानी को ट्रीट करके।
जेएनयू में कथित तौर पर देशद्रोही नारे लगाने वाले 5 छात्र वापस लौटे। कार्यक्रम में खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है और करीब 300 लोग घायल हैं। घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हरियाणा में पिछले कई दिनों से जाट समुदाय के सदस्य आरक्षण की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। बांग्लादेश की पुलिस का कहना है कि उन्होंने रविवार को एक हिंदू पुजारी जागेश्वर रॉय की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में से 2 प्रतिबंधित इस्लामी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के सदस्य हैं। इस संगठन पर देश में मौजूद अल्पसंख्यकों पर पहले भी हमले करने के आरोप लगते रहे हैं। इन लोगों को पंचगढ़ जिले से गिरफ्तार किया गया है, जहां रॉय की हत्या हुई थी और 2 श्रद्धालु घायल हुए थे। संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस संगठन की बांग्लादेश में कोई उपस्थिति नहीं है। फिजी द्वीप पर आए शक्तिशाली चक्रवात से अब तक 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने फिजी की राजधानी सुवा के लिए मदद रवाना कर दी है। वहां की कुछ विमान सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं, लेकिन वहां मदद पहुंचाना काफी मुश्किल हो रहा है। वहां यूनिसेफ की ऑस्ट्रेलियाई शाखा की एलिस क्लेमेंट्स ने इस पूरी स्थिति के बारे में बताया।
During the night, we had those awful sounds that you associate with a very strong cyclone, where you have, you know, the ripping.
रात के समय हमें चक्रवात से जुड़ी बहुत ही डरावनी आवाजें आ रही थीं। पेड़ों का उखड़ना, उनका टूटना और बिजली की तारों पर गिरने के बाद धमाके की आवाजों ने हमें बहुत डरा दिया था। उन इलाकों का हवाई सर्वे किया गया जहां हम जमीन के रास्ते नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन अगर आप विमान से नीचे देखें तो आपको लगेगा कि शायद यहां कोई गांव होगा, लेकिन अब वहां केवल मलबा ही बचा है। इस चक्रवात का लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। यूनिसेफ की ऑस्ट्रेलियाई शाखा की एलिस क्लेमेंट्स के शब्द। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि पाकिस्तानी विशेष दल SIT भारत पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए तैयार हो गया है। पठानकोट हमले के बाद भारतीय जांच एजेंसियों ने आरोप लगाए थे कि पाकिस्तान के कुछ संगठन इस हमले में शामिल थे। ये दल उन्हीं आरोपों की जांच में भारतीय एजेंसियों की मदद करेगा। खान ने कहा कि भारतीय अधिकारियों को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दे दी है। सऊदी अरब में 30 लोगों पर ईरान के लिए कथित रूप से जासूसी का आरोप लगने के बाद मुकदमा शुरू किया गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार सभी आरोपी अल्पसंख्यक शिया समुदाय के हैं। उन पर जासूसों का एक नेटवर्क चलाने का आरोप है, जिससे कि सऊदी की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके। सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमानों का वर्चस्व है, तो वहीं ईरान में शिया मुसलमानों का। दोनों ही समुदाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। शिया धार्मिक नेता निम्र अल निम्र की सऊदी अरब में पिछले दिनों हत्या कर दी गई थी। उन पर चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। तब से दोनों ही देशों के संबंध और भी अधिक खराब हो गए हैं। वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 100वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे थे, लेकिन BHU गेट के बाहर पुलिस ने वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज किया। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। चौदह जनवरी से हरियाणा में जारी आंदोलन को रोकने के लिए आज जाट समुदाय के प्रतिनिधियों से कल उनकी राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सरकार ने जाटों के लिए आरक्षण की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। लेकिन इसके बाद भी हरियाणा में स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हुई हैं। हालांकि कई राजमार्ग खुल चुके हैं, लेकिन सड़कों पर आवाजाही बहुत कम है। इस आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में अब तक कुल 16 लोग मारे जा चुके हैं और कुछ देर पहले भी सोनीपत में गोली चलने के समाचार हैं, लेकिन इसमें हताहतों की संख्या कितनी है अभी औपचारिक जानकारी आनी बाकी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा,
ज्यादातर लोग वापस घर जा चुके हैं, ज्यादातर रास्ते क्लियर हो चुके हैं। कुछ समस्याएं हैं, सांपला है या एक दो जगह और है, कुछ जगह राजनीति से प्रेरित भी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी राजनीतिक व्यक्तियों से, कैसे माहौल में राजनीति ना करें। हरियाणा पहले ही बहुत बर्बाद हो चुका है, जान माल की बहुत हानि हुई है, अब लोगों को शांत रहने दें। आरक्षण का मुद्दा सुलझ चुका है, जो और छोटे छोटे मुद्दे थे उनको हम सुलझा लेंगे समय के साथ, बैठकर सबके बीच में जैसे ही शांति होगी। तो सभी राजनीतिक व्यक्तियों से भी अपील है और जो लोग अभी सड़कों पे हैं बहुत थोड़ी सी मात्रा में, उनसे भी अपील है कि घर वापस जाएं, शांति होने दें।
अपील कर रहे थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। तो हरियाणा की वर्तमान स्थिति क्या है, हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने बात की हरियाणा के अतिरिक्त गृह सचिव पीके दास से और उनसे यही सवाल पूछा।
अभी एक मेजर ग्रुप जो सांपला में रोड ब्लॉकेट पे बैठे थे, उन लोगों ने फैसला किया है अपना ब्लॉकेट खत्म करने के लिए। जो एक ग्रुप मयड़ में हिसार में बैठे थे, उन लोगों ने भी अपना ब्लॉकेट खत्म कर दिया है, जबकि वो रेल लाइन पर बैठना जारी है उन लोगों का। अब ये दोनों की फैसला होने के बाद मुझे उम्मीद है कि भिवानी और जींद में बाकी जो छोटे मोटे जगह रोड ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी सोनीपत में नेशनल हाईवे नंबर 1 पे अभी भी गतिरोध जारी है और हुबड़ू जो मुनक चैनल है जिसमें दिल्ली को पानी दी जाती है, उसमें हुबड़ू एक जगह है, वहां पर लोगों ने वो रिपेयर के काम को रोक रखा है। अभी के ये परिस्थिति ऐसा लग रहा है मुझे कि रोहतक, झज्जर, भिवानी, जींद, हिसार, कैथल, इन एरिया में स्थिति सामान्य होगा और सारे जो बंद सड़कें थे वो खुल जाएंगे। पहले से पानीपत, करनाल आदि ठीक थे। इसके साथ साथ हमारी एक और जो चिंता है कि आपसी झड़प जो हिसार के हांसी कस्बा में हुआ है या उसके आसपास हुआ है और कैथल में हुआ है, उसके ऊपर हम ध्यान न दिए हुए हैं और हमारी पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है।
टोटल कैजुअल्टीज कितनी हुई हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं, क्या वो संख्या जो 16 अपने सुबह
शाम कल रात तक हमारी टोटल कैजुअल्टीज 16 थे। आज हमारी पुलिस कार्रवाई के दौरान नेशनल हाईवे नंबर 1 पर पुलिस को और आर्मी को गोली चलाना पड़ा है, लेकिन उसके बारे में अभी मुझे आधिकारिक रूप से पता नहीं चला है कि उसमें कोई कैजुअल्टी है या नहीं है।
पूरे इस एपिसोड को लेकर जो भी हरियाणा में जाट रिजर्वेशन के बाद हुआ है, कई जगह संपत्तियां भी जलाई गई हैं, कई तरीके की ऐसी चीजें सामने आई हैं जो नहीं आनी चाहिए थी, एक प्रशासक के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या इस समय है?
इस समय मेरे सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो मैं जो कानून व्यवस्था स्थिति को बहाल करूं और जो एक इस आशंका है कि एक जाट और गैर जाट के बीच में एक सामाजिक एक टेंशन शुरू हो सकता है, उसको कंट्रोल करूं, एक जो सामाजिक भाईचारा है उसको बनाए रखने के लिए हम लोग कोशिश करें, ये हमारे लिए चैलेंज है।
इंटरनेट सेवाएं, मोबाइल सेवाएं, ये कब तक बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी?
मुझे लगता है कि अगर आज हम इस रोड व्यवस्था को ठीक कर पाए और रजिस्ट्रेशन चले जाते हैं तो हम तुरंत बहाल कर देंगे, बट आई एम वॉचिंग दी डेवलपमेंट।
तो हरियाणा के अतिरिक्त गृह सचिव पीके दास स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जिस सोनीपत का जिक्र अतिरिक्त गृह सचिव पीके दास कर रहे हैं उसी सोनीपत में हमारे सहयोगी सलमान रावी भी मौजूद हैं। आज भी वहां पर तनाव है और वहां पर बताया जा रहा है कि कुछ गोलियां भी चली हैं, जैसा कि पीके दास साहब ने भी कहा। सुनिए सलमान रावी की आंखों देखी।
ये बताइए इस रास्ते पे जा सकते हैं क्या, वहां आगे बेटे वहां जा सकते हैं क्या, आगे रास्ते बंद है?
नहीं कोई नहीं जा सकता,
मॉब है वहां पे, ग्रुप प्रदर्शनकारी हैं।
हाँ, बहुत ज्यादा पब्लिक बहुत बैठी है, कोई रास्ता नहीं है जाने का,
उधर तोड़फोड़ भी हुई है, उधर की तरफ जा सकते हैं क्या?
नहीं जा सकते।
मैं इस वक्त सोनीपत के खेवड़ा गांव में हूँ, बहुत सारे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि सरकार की तरफ से कोई सुगबुकाहट, कोई आश्वासन, कोई बात?
एक दूसरे की जाति पाति की लड़ाई करवा रहे हैं फिलहाल राजनीति वाले, बाकी सोनीपत अंदर गोहाना में फूक दिए हैं कॉलेज और पूरा डिपो, और मुरथल में ITI कॉलेज है वो फूक दिया, जुराशी पार्क है वो फूक दिया है।
यो सारी बीमारी तो कर रखी है इसे, यो कौन से राजकुमार सैनी
शो कॉज नोटिस इशू किया है पार्टी ने, बीजेपी ने को जो है कारण बताओ नोटिस भी दिया है कि ऐसा है माफी मांगो बोल के बोला है?
ऐसा है जी, माफी मांगने से आदमी को मार दो और एक आदमी उग्र रूप ले गया, वो तो कुछ भी नुकसान कर दिया, उग्रवादी हो गया।
लेकिन अभी तक जो है आपको लगता है कि अब समाधान होगा, जैसे सरकार ने कहा, गृह मंत्री ने कहा?
बयान से कुछ नहीं करे, कुछ नहीं है वो करे दो ने खत्म मामला, कहने से नहीं होता, लेकर दे दो हो जाएगा। और ईव आगे जवान तबका नादान के हाथ में आगे बागडोर,
मतलब ये नेतृत्व के हाथ से
बड़े बूढ़े मारी बूझ नहीं करते बाढ़ की भी,
नेतृत्व विहीन हो गया ये आंदोलन आप कहना चाह रहे हैं?
ऐसा है जी, हम तो रुखाड़े हिंद के कदे ये इन मनुकसान पहुंचा जाए,
इसलिए आओ हम थे नए बड़का के हाथ में आगे बागडोर
जी क्या कह रहे
जो खाप के चौधरी नेता थे वो उनकी पूछ नहीं रही नए बड़क आगे रोड
हमारी पूछ करते इसलिए आओ हम थे नए बड़का के हाथ में आगे बागडोर और ये करे है ना ये हमने सुन लिया ये दूसरी जाति के है वे करे उधर जितना करे आग भी लगाओ है टूट फूट तोड़ फोड़ जो भी कुछ करे दूसरी जाति के पानी की वजह से बता ही 24 घंटे में जो दिल्ली ने पानी अड़े नहर ने खोल लेंगे भी दिल्ली ने पानी देंगे 24 घंटे में तो उड़े जागा वो सप्लाई होगी 24 घंटे लगेंगे पानी खत्म होने लग रहा है ये तंग हो रही पब्लिक तंग होने लग रही है सरकार के हाथ नीचे लग रही इससे बात पर राहुल गया था जब दिल्ली में रामदेव अनशन कर रहा था वो अंडे भट्ठा परसोल अनुयायी भी मोदी आड़े की आगे नहीं बचाई हरियाणा की दिल्ली की उड़े बाज रहा है उड़े उसमें क्या मैं छत्तीसगढ़ में 56 घंटे में
बाज रहा है मोदी
कुछ तो कर सोचो वो किस लिए बना था पब्लिक राजा होता है पब्लिक की बात सुनो ठीक है तो मानो गलत है तो
सलमान रावी बीबीसी सोनीपत हरियाणा
सोनीपत के ये सज्जन अपील कर रहे हैं कि मोदी जी हमारी बात तो सुने आप हमारे राजा हैं लेकिन आप राजा होने के नाते हमारी बात जरूर सुनिए सलमान रावी ने सोनीपत में कुछ ऐसे लोगों से बात की जो वहां के जो लोगों के दुख में साथ हैं
सोनीपत और दिल्ली के बॉर्डर पर हूँ जहाँ पर यहाँ गांव के लोग इस बॉर्डर के गांव के लोग यहाँ पर मुसाफिरों के लिए मुफ्त में खाने और पानी का इंतजाम कर रहे हैं जो मुसाफिर रस्ते में फंसे हुए हैं जाम की वजह से जाट आंदोलन की वजह से उनके लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं कब से कर रहे हैं आप लोग ये सब यहाँ पर
20 तारीख से कंटिन्यू हमारा यानी कि चाय पानी का भंडारे का साग पूरी वगैरह अपना समस्त गांव की तरफ से शांतिपूर्वक यानी कि जाट आंदोलन का हिस्सा भी है और शांतिपूर्वक यानी कि कार्रवाई कर रहे हैं भंडारा कंटिन्यू चल रहा है और आगे चलता रहेगा जब तक ये दाम रहेगा जब तक हमारा यानी कि भंडारा चलता रहेगा और ये की जो हमारी SDM है वो भी हमारे को कोऑपरेट कर रही है उन्होंने यानी कि गुरु तेग बहादुर मेमोरियल जो स्थल है उसको ओपन करवा दिया ताकि महिलाओं को कोई परेशानी ना हो बच्चों को कोई परेशानी
आपसे पूछना चाहता हूँ आप लोग नौजवान हैं रात भर जाग जाग कर कर रहे हैं सुनते हैं यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि पूरी पूरी रात आप लोग लगे हुए हैं यहाँ
पूरी रात लगे रहते हैं यहाँ पे और कुछ सारा काम करते हैं जो रात रुके हुए हैं उसके लिए
गाड़ियों से बुला के लाते हैं खाना दे खाना खा लो भंडारा लग रहा है और इधर रुकने की व्यवस्था है रजाई गद्दे वगैरह हमने डलवा रखे हैं कि परेशान ना हो इधर डलवा रखे कि अपना रेस्ट करो खाने वाने का 2-3 दिन से चल रखा भंडारा साग पूरी सब्जी वगैरह हमने सब करवा रखा इंतजाम
तो सुना आपने कि जहां एक तरफ हिंसक आंदोलन भी चल रहा है वहीं पर लोगों की तरफ से ये एक मानवता का एक जो जेस्चर है वो भी दिखाया जा रहा है कि लोगों के लिए जो फंसे हुए मुसाफिर हैं उनके लिए पानी और खाने का इंतजाम किया जा रहा है सलमान रावी BBC दिल्ली सोनीपत बॉर्डर
वहां की आम जनता की आवाजें हरियाणा में राजनीति अभी भी गर्म है सीधे चलते हैं कार्यक्रम में शामिल करते हैं संजय शर्मा को जो कि चंडीगढ़ से कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं संजय शर्मा जी अभी कुछ देर पहले हमने एक इंटरव्यू प्रसारित किया था जो कि अतिरिक्त गृह सचिव PK दास का था और उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ी जो चुनौती है प्रशासनिक व्यवस्था को बहाल करना तो है ही है ये जाट और जो गैर जाट के बीच का जो समीकरण गड़बड़ हो रहा है सबसे बड़ी चुनौती ये है आप क्या कहेंगे
जी बिल्कुल ये सबसे गंभीर समस्या है मेरी कुछ सीनियर लोगों से बात हो रही थी BJP के अंदर अंदर सरकार में और मंत्री उन लोगों का कहना है कि ये जिस तरह की भावना भड़की है उसके बाद जाट नॉन जाट का जो डिवाइड है वो इतना गहरा है और मुझे ये भी पता लगा है कि आज कुछ बीजेपी के नेताओं ने जो जाट आरक्षण के खिलाफ थे श्री अमित शाह से मुलाकात की और इस बात पे ये दर्ज कराया कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ अगर आप इनको भी आरक्षण दे देंगे तो हमारा क्या होगा हम इतने टाइम से इस मुद्दे को उठाते रहे और MLAs की भी शायद मीटिंग बुलाई जा रही है। MLAs ने भी 41 MLA 47 में से गैर जाट हैं, उन लोगों ने चीफ मिनिस्टर को कहा तुरंत मीटिंग बुलाइए और हमारी बात सुनिए, आपने हमसे पूछे बिना ये कर कैसे दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो 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 घमासान बाहर सड़कों पे है वो बीजेपी के अंदर और कैबिनेट तक पहुंचने वाला है।
यानी कि ये जो मामला है ये अभी थमने वाला नहीं है, और जाटों के आरक्षण की तो घोषणा कर दी, लेकिन जो बाकी है राजपूत जैसी जो जातियां वो नाराज हो सकती हैं।
नहीं सारी, एक तो जो आरक्षण वाली जातियां हैं जो ओबीसीज हैं उनको इस बात से बड़ी परेशानी है। फिर उनका मानना है कि अभी तक 10 चीफ मिनिस्टर्स में से 7 चीफ मिनिस्टर जाट रहे हैं हरियाणा के इतिहास में, तो इस स्थिति में और क्या दिया जा सकता है इनको। आप पुलिस फोर्स में 50% से ज्यादा लोग माना जाता है जाट, और वो लोग ये कहते हैं शायद फेल होने का कारण ये सरकार का कि ग्राउंड लेवल पे सहानुभूति होने की वजह से वो एक दूसरे को टक्कर देने को तैयार नहीं थे पुलिस वाले आंदोलनकारियों को।
जी संजय, बस एक बात और जानना चाहेंगे कि हिंसा की क्या स्थिति है, क्या जैसे कि सचिव कह रहे थे पीके दास जी, जो सोनीपत में कुछ फायरिंग हुई है उसमें कुछ आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं मारे जाने वालों?
आधिकारिक नहीं है, लेकिन ये बात बड़ी जोर शोर से कि 2 लोग मारे गए थे उस गोलीबार में NH1 को रोकने खाली कराने के लिए, लेकिन अभी हो पाया नहीं हो पाया इसकी पूरी पुष्टि नहीं है, लेकिन
पुष्टि होनी बाकी
है, अभी नहीं शुरू हो पाई है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा सीधे कार्यक्रम में चंडीगढ़ से शामिल होने के लिए। इस बीच जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में पानी लगभग खत्म हो चुका है, एक तिहाई दिल्ली पानी के संकट से जूझ रही है। दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा बोले,
अभी ये जो नहर टूटी है पक्की वाली, इसको रिपेयर होने में हो सकता है 1 हफ्ता या 10 दिन भी लग जाए, ये तो देखने के बाद ही पता लगेगा। तब तक पानी की सप्लाई कमी रहेगी, पानी की कमी रहेगी दिल्ली के अंदर, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी हम लोग चला देंगे जो कच्चे रास्ते से आ रहा है उस पानी को ट्रीट करके। तो सबसे ये निवेदन है कि पानी को अभी बचाते रहें, अभी संकट खत्म नहीं हुआ है, मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, पानी की कमी अभी जारी है, लेकिन कुछ कुछ सप्लाई आज रात तक शुरू कर देंगे।
दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा का बयान। दिल्ली की जल आपूर्ति करने वाली मुनक नहर को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया था, हालांकि इसे दुरुस्त करने के प्रयास जारी हैं और दिल्ली पर छाए पानी की कमी के बादल जल्दी छटने नहीं वाले हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक पानी की किल्लत बनी रहेगी। बीबीसी संवाददाता रविंदर बावा की रिपोर्ट।
दिल्ली के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में आज सुबह से ही लोग अपने बाल्टी डब्बे लेकर पानी भरने निकल पड़े। राजधानी में पिछले 4 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। करोल बाग इलाके में रहने वाले राजू प्रधान अपने परिवार वालों के साथ पानी की कतार में नजर आए।
दिक्कत हम लोगों को झेलनी पड़ती है, उनके चक्कर में आज कितना नुकसान हुआ देश का, कितने पेट्रोल चलाए गए, कितनी गाड़ियां चलाई गई हैं। पानी के लिए इसलिए महसूस हो रहा है कि मुनक नहर पे जिस हिसाब से उन्होंने रोका टोकी करी है, उस हिसाब से दिल्ली वालों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है।
जाट आरक्षण के लिए हरियाणा में चल रहे आंदोलन की वजह से मुनक नहर का पानी रोक दिया गया है। इस नहर से उत्तरी और पश्चिमी दिल्ली को पानी पहुंचाया जाता है। मुनक नहर को आंदोलनकारियों ने न सिर्फ रोका बल्कि काफी नुकसान भी पहुंचाया। इस नुकसान को दुरुस्त करने में 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने बताया कि दिल्ली वासियों को पानी की कमी और कुछ दिन तक झेलनी होगी।
Now the restoration work will start.
नहर की मरम्मत का काम शुरू होगा और अगले 12 घंटे में पानी दिल्ली पहुंचेगा, लेकिन कमी फिर भी रहेगी।
The quantum of water obviously would be less.
इस दिक्कत को दूर करने के लिए दिल्ली में करीब 800 टैंकरों के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है।
बीबीसी संवाददाता रविंदर बाबा की रिपोर्ट, जो कि बता रही थी कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में पानी का संकट बरकरार रहेगा।
दिन भर शॉर्टवेव 25, 31 और 41 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,595 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। चर्चा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की करते हैं। जेएनयू में छात्र नेता उमर खालिद समेत वो 5 छात्र धरने पर बैठे हैं जिन्हें देशद्रोह के कथित तौर पर मामले में पुलिस तलाश कर रही है। उनके इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी कैंपस में सैकड़ों विद्यार्थी भी मौजूद हैं। कल रात ये 5 छात्र विश्वविद्यालय में आए। कल रात उमर खालिद ने परिसर में छात्रों के सामने अपनी बात रखी।
साथियों, मेरा नाम उमर खालिद जरूर है लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। पिछले 10 दिनों में मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे खुद नहीं पता थी। मुझे पता चला कि मैं दो बार पाकिस्तान होकर आया हूं। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि मैं दो बार पाकिस्तान होकर आया। फिर मुझे पता चला कि मैं मास्टर माइंड हूं। जेएनयू के स्टूडेंट्स, दे हैव अ वंडरफुल माइंड, एंड आई वॉज प्लानिंग दिस प्रोग्राम इन 17-18 यूनिवर्सिटीज। आई डिड नॉट नो, आई सीरियसली डिड नॉट नो माई इन्फ्लुएंस वॉज सो ह्यूज।
ये आवाज उमर खालिद की आप सुन रहे थे, जो कि कल रात उन्होंने जेएनयू में छात्रों के सामने जो भाषण दिया था या अपनी बात रखी थी वो आवाज थी। अब ये पांचों छात्र विश्वविद्यालय परिसर में हैं और पुलिस परिसर के बाहर, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। शिक्षकों के वाइस चांसलर से मुलाकात के दौरान पांच मांगे रखी गई हैं, जिनमें इन पांचों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा वापस लेने की मांग भी शामिल है। इन पांचों विद्यार्थियों में से एक आशुतोष कुमार से हमारे साथी जुबैर अहमद ने मुलाकात की और पूछा कि पुलिस आपको तलाश कर रही है, क्या आप अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा,
देखिए, जो चीज़ हम लोगों ने किया ही नहीं, जो जुर्म हम लोगों ने किया ही नहीं, उस बात से कोई डरना नहीं है हम लोगों को। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, 9 तारीख के बाद पूरा का पूरा मीडिया ट्रायल चला और उसके बाद पूरा धरपकड़ शुरू हो गई। लोगों कैंपसेस के भीतर यहाँ पे पुलिस आई, लोगों के इवन गर्ल्स स्टूडेंट्स के रूम को मेल पुलिस ने पूरा खंगाला और पूरा फ्रेंजी क्रिएट करके ऐसा लग रहा था कि मॉब लिंचिंग चल रहा है, मैंने भीड़ में आप चले जाइए तो आपको मार दिया जाएगा, तो पूरा डर और इसका माहौल था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जेएनयू के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे, एक अल्टरनेटिव वॉइस पूरे देश के लोगों ने सुनी कि हम लोग गलत नहीं थे, वो नारे हम लोग नहीं लगा रहे थे, लेकिन तब भी हम लोगों को टारगेटिंग की गई।
तो आप लोग फरार क्यों?
देखिए, इसमें मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि इससे पहले जो मैंने कहा कि जो विच हंटिंग चल रही थी, कि मतलब अननोन पर्सन के नाम पे सेडिशन का चार्जेस लगा के पूरी लिस्ट बना ली उन्होंने, और जो भी मेन लीडर है जैसे कन्हैया, कहीं वीडियो में उन्होंने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया, देश विरोधी नारे, भारत को तोड़ने वाले नारे, कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन वो विच हंटिंग पूरी शुरू हो गई कि इनको पकड़ के इनको दबिश डाल दी। वैसे डर के माहौल में उस समय एकदम ये बात था कि यहाँ पे कैंपसेस में 200 जो है आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग आके ये कर रहे हैं कि ये बाहर निकले तो मैं गोली मार दूंगा। खुद कन्हैया को जब पेशी हो रही है, जो पुलिस कस्टडी में उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो आप बताइए कि ये डरना स्वाभाविक है कि नहीं? तो इसको फरार आप कह लीजिए, मैं तो ये नहीं चाहता हूँ।
तो वापस कैसे आए?
हम लोग वापस इसलिए आए हैं क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरीके से आवाज़ें उठी, एक हमारे सही पिक्चर जो है, जो सच्चाई है, लोगों के सामने आई धीरे धीरे करके, उसमें कुछ मीडिया ने अच्छा भी रोल निभाया, लेकिन बहुत सारे मीडिया लोगों ने हमारे खिलाफ माहौल बनाया, उसके कारण हमें एक हिम्मत मिली कि नहीं, हमारी वॉइस लोगों तक पहुंच रही है और हमें जाना चाहिए।
ये साहस जुटाया आप लोगों ने?
जी।
तो आप सब पांचों साथ में थे जब यहाँ पर नहीं थे? तो
ये बात मैं क्लियर कर लेना चाहता हूँ कि हम लोग सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, ना तो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, तो इसीलिए हम लोगों ने एक साथ कोई हमारे ये आपस में जुड़े भी वो लोग नहीं, तो कहीं से भी नहीं है। हम और रामा और अनंत हम लोग आयशा से हैं, बाकी सारे लोग दूसरे हैं, तो उनका अपना जो भी था, हम लोग से उनसे कोई संबंध नहीं।
और ये जो अफजल गुरु के हवाले से जो इवेंट हुआ, उसके पीछे क्या मकसद क्या था इस इवेंट को कराने का?
देखिए, ये मुझे लगता है कि जो ऑर्गेनाइज किए हैं उनसे ही पूछना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस लेफ्ट स्ट्रीम से हम आते हैं, हम लोग कतई इस तरह से सहमत नहीं हैं, ना तो इन नारों से सहमत हैं। हाँ, लेकिन डिबेट डिस्कशन का हमेशा मौका रहता है।
इसकी आप निंदा करते हैं जो
एकदम दसियों बार हम लोगों ने लिखित तौर पे कंडेमनेशन किया।
तो ये जो उमर खालिद के बारे में लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था और पुलिस ने जो सेडिशन चार्जेस लगाए हैं उसमें ये भी था कि वो सरगना थे, तो ये कहाँ तक सही है?
देखिए, इस तरह का वर्ड कोई भी जेएनयू के स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है कि मीडिया को भी नहीं करना चाहिए। इसे ही दरअसल हम लोग मीडिया ट्रायल करते हैं। कोई मास्टरमाइंड हो जाता है सडनली, कोई सरगना हो जाता है बिना किसी प्रूफ के, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, कोर्ट में मामला सारा कुछ है, लेकिन उसको चले बिना ही ये सरगना हो रही है।
यहाँ आप बैठे रहे हैं पुलिस के इंतजार में है या पुलिस आपके इंतजार में?
नहीं, इंतजार वाली बात नहीं है, हम लोग जैसे एक मूवमेंट के दौर में है। हम लोग रोहित वेमला का आंदोलन 23 तारीख को पूरे देश भर से स्टूडेंट आ रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग वहाँ पे मार्च करेंगे।
लीगल प्रोसेस से गुजरने के लिए आप तैयार हैं?
आशुतोष कुमार कह रहे थे कि वो लीगल प्रोसेस यानी कि कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हैं। उनसे बात कर रहे थे जुबैर अहमद। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पामपोर इलाके में चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच पिछले दो दिन से जारी मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। सेना ने ऑपरेशन के बाद बताया कि इस लंबी लड़ाई में अब तक दो अफसर समेत 5 सैनिक, 1 नागरिक और 3 चरमपंथी मारे गए हैं। और जानकारी रियाज मसरूर से।
यह हमला श्रीनगर से दक्षिण की तरफ 15 किलोमीटर दूर पामपोर में स्थित एक सरकारी इमारत में शनिवार को उस वक्त शुरू हुआ जब सशस्त्र चरमपंथियों ने इमारत पर धावा बोल दिया। इस इमारत में मौजूद लोग और कर्मचारी बाहर निकल आए, ताहम भारतीय सेना ने इमारत का घेराव किया जिसके दौरान चरमपंथियों ने जबरदस्त फायरिंग की। हमले में एक नागरिक और 2 सैनिक अफसरों समेत 5 सिपाही मारे गए। कश्मीर में तैनात भारतीय सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने मारे गए युवा सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल दुआ का कहना था कि भारतीय सेना की यह खास बात है कि इसके युवा अफसर आगे जाकर लड़ते हैं और इन जवानों की शहादत देश के लिए गर्व का प्रतीक है। ये लड़ाई शनिवार से ही जारी थी, लेकिन सोमवार को सेना ने हेलीकॉप्टर गनशिप्स, रॉकेट्स, मार्टर गोलों और छोटी तोपों का प्रयोग करके इमारत की ऊपरी मंजिल को ब्लास्ट कर दिया। सैनिक अधिकारियों का कहना है कि 50 कमरों वाली इस इमारत को पूरी तरह सुरक्षित घोषित करने के लिए तलाशी अभियान जारी रहेगा। तहां वहां 3 लाशें मिली हैं जिनके बारे में सेना कहती है कि वो हमलावर चरमपंथियों की हैं। पुलिस का कहना है कि पिछले 2 महीनों में ऐसी ही कई मुठभेड़ों में 28 चरमपंथी मारे गए। जनरल दुआ कहते हैं कि पिछले वर्ष नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के 600 प्रयासों को विफल किया गया। पामपोर की घटना के बाद घाटी में सुरक्षा बंदोबस्त और कड़े किए गए हैं। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
रुख छत्तीसगढ़ का करते हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की नेता और समाज सेवी सोनी सोडी पर केमिकल पदार्थ से हमले के बाद उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है। वहीं शनिवार रात दंतेवाड़ा में उन पर हुए इस हमले के विरोध में दिल्ली में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ भवन के सामने प्रदर्शन किया। पूरे ब्यूरो के साथ दिव्या आर्य।
दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ICU में जिस शख्स को मैंने देखा वो सोनी सोरी जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। सोनी पर हमले के बाद शनिवार को जो तस्वीर उनकी सामने आई थी, अब स्थिति उससे कहीं बदतर है। चेहरे पर लगाए गए केमिकल पदार्थ का काला रंग पक्का सा हो गया है और होंठ, आंखें समेत पूरे चेहरे पर बहुत सूजन है। अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के मुताबिक,
केमिकल से चेहरे की त्वचा जल गई है। हम हर घंटे उन पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सोनी को ठीक होने में अभी कुछ हफ्ते तक लग सकते हैं। उनकी आंखों की रोशनी फिलहाल सलामत है और उनकी जान को खतरा नहीं है।
पर यहां छत्तीसगढ़ भवन के बाहर सोनी सोरी पर हमले के विरोध में जुटे प्रदर्शनकारियों के मुताबिक शारीरिक चोट के अलावा इस तरह के हमले खौफ पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण,
ये तो इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ये लोग वहाँ का सच उजागर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो एक बिल्कुल ब्लैक होल सा बन गया है, उसमें से कुछ सत्य बाहर देश को भेजा जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। इस वजह से उनको क्रश करने के लिए सब दमन चल रहा है।
सोनी के मुताबिक इसी महीने उनके घर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने 3 पर्चे फेंके जिनमें उन्हें जान से मारने की धमकी लिखी हुई थी। सोनी का आरोप है कि वो पिछले दिनों आदिवासियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तरफ से प्रताड़ना, खासतौर पर यौन हिंसा के मामलों में FIR दर्ज करवाने की नाकाम कोशिशें करती रही हैं और इन वजहों से हो सकता है कि उन्हें निशाना बनाया गया हो। हाल ही में उन्हें मिलकर और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ यौन हिंसा की स्वायत्त पड़ताल कर लौटी कल्याणी मेमन सेन ने कहा,
बार बार इन घटनाओं की रिपोर्ट आते हैं, फैक्ट फाइंडिंग टीम जाती है, ये लोग उन फैक्ट फाइंडिंग टीम के रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं, हम लोगों पे दबाव धमकी करने की कोशिश करते हैं, इनके सारे जो पुतले हैं चारों तरफ उनको सबको ला के भीड़ जमा करवा के हम लोगों को रुकवाने की कोशिश करते हैं।
सोनी सोरी पर बार बार नक्सल समर्थक होने के आरोप लगते रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका रही सोनी सोरी को अक्टूबर 2011 को क्राइम ब्रांच और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियान में माओवादियों के साथ संबंध होने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। सोरी पर लगाए गए 8 मामलों में से 7 में वो बरी हो चुकी हैं और 1 में उन्हें जमानत मिली हुई है। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
और इससे पहले कि हम मुख्य समाचार सुने, आपसे माफी चाहते हैं कि आज समयाभाव के चलते आपको आपकी चिट्ठियां हम नहीं सुनवा पा रहे हैं। मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है और करीब 300 लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेश की पुलिस का कहना है कि उन्होंने रविवार को एक हिंदू पुजारी जागेश्वर रॉय की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 प्रतिबंधित इस्लामी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के सदस्य हैं। फिजी द्वीप पर आए शक्तिशाली चक्रवात से अब तक 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने फिजी की राजधानी सुवा के लिए मदद रवाना कर दी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा के इस अंक में इतना ही। तिलक राज भाटिया आज स्टूडियो संभाल रहे थे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।